ओम शांति। बाबा की रोज भी हम सभी मुरली सुनते हैं और इस बार की अव्यक्त मुरली भी सभी ने सुनी है। क्या चाहते हैं बाबा, कैसे बन जाए मेरे बच्चे? विदेही बन जाए। और भाई बोलेंगे क्या बन जाए? मुक्त और जीवन मुक्त। ठीक है, तो बाबा की हम सभी के लिए श्रेष्ठ प्रेरणाएं, बाबा ने इशारे में समय के लिए भी बहुत कुछ कह दिया। 99 के चक्कर की बात की, 99 में कुछ ना कुछ चक्कर तो पड़ेगा ही, ऐसा दिखाई दे रहा है। उस चक्कर में हम सभी ना आ जाएं, ये बाबा चाहता है कि मेरे बच्चे जो इस सारे संसार को चक्कर से निकालने वाले हैं वो उस चक्कर में ना आ जाएं, क्योंकि विनाश का समय तो तेजी से आता जा रहा है और दिखाई दे रहा है। सभी लोग व्यक्तिगत रूप से महसूस कर रहे हैं, केवल भविष्यवाणियों के आधार पर नहीं। आज ही हमने एक बात पर चर्चा की किसी से, बाबा ने कई साल पहले एक मैसेज में विनाश के बारे में एक बहुत अच्छी बात कही थी कि संसार में इतना दुख, अशांति, उलझन, परेशानियां, तनाव बढ़ जाएगा कि हर एक आत्मा भगवान से प्रार्थना करने लगेगी। ज्ञानियों को तो प्रार्थना करनी नहीं, और सब जो हैं कि हे भगवान, ये दुनिया अब रहने लायक नहीं रही है, इसे खत्म करो, हम यहाँ अब रहना नहीं चाहते। तो वो दिन अब तेजी से आ रहे हैं, आ गए हैं बहुतों के सामने कि हर व्यक्ति उलझता जाता है। सबसे पहली आवश्यकता ज्ञानियों को इस बात की है, समय की पहचान होते हुए, कि हम इस तरह ही संसार में चलें ताकि हमें कहीं कोई भी उलझा न पाए। उलझाने की बातें बहुत हैं और अंतिम समय आ गया बिल्कुल, तो तेजी से उलझन होगी। इसलिए बाबा ने अंतिम स्थिति, तीसरी स्थिति, विदेही बनने के लिए हम सबको प्रेरणा दी। विदेही का अर्थ है कि इस देह में इस तरह रहो, इस संसार में इस तरह रहो मानो तुम यहाँ नहीं रहते। देह में रहती है आत्मा, पर अनुभव ये हो कि जैसे कि देह में नहीं रहते, आए हुए हैं बस थोड़े से समय के लिए। इस संसार में रहते हुए ये रहे कि इस संसार में नहीं रहते, कर्म करते हुए ऐसा अनुभव रहे कि हम कुछ भी नहीं करते, जिम्मेदारी संभालते हुए ऐसे अनुभव में रहें कि हम पर कोई बोझ नहीं है। ये सब है विदेही स्थिति। तो इस स्थिति को पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आज हम कुछ बहुत अच्छी जीवन में इम्पोर्टेंट धारणाओं पर चर्चा करेंगे आपके साथ, जो हमें विदेही बनाने की ओर ले चलें, जो हमें समय की उलझनों से मुक्त रखें। क्योंकि तो अगर हमारा मन उलझा रहता है तो उसमें शक्ति नहीं बचती पुराने विकर्मों के फोर्स को सहने की, आज बाबा ने कहा, समस्याओं से लड़ने की, परिवारों में जो छोटी छोटी बातें होती हैं उन्हें पार करने की। तो हम अपने जीवन के लिए कुछ धारणाएं निश्चित करें जिससे हमारी संकल्प शक्ति, हमारे ईश्वरीय खजाने जो बाबा ने चर्चा की है मुरली में, हमारे पास ही रहें। बहुत खजाने हैं, हम सभी को ये जानना ही चाहिए कि हमारे पास सबसे बड़ा खजाना कौन सा है? संकल्प, जिसके द्वारा ये संसार चल रहा है। हम में से ही कुछ आत्माएं, महान आत्माएं ऐसी हैं जो समय को भी चलाती हैं, जो समय को भी परिवर्तित कर देती हैं, और शेष सभी आत्माएं ऐसी हैं जिन्हें समय परिवर्तित करता है, जिन्हें समय चलाता है, जिन्होंने अपनी संकल्प शक्ति को बहुत बढ़ा लिया है, जिन्होंने अपने संकल्पों को पवित्र कर लिया है, सभी उलझनों से मुक्त कर दिया है, व्यर्थ समाप्त कर दिया है, उनके पास ये खजाना बहुत ज्यादा हो जाता है और उनकी उपस्थिति इस संसार में वैसी हो जाती है जैसे शिव बाबा की। कई बाबा के बच्चे पूछा करते हैं कि जब ये अव्यक्त बाबा का पाठ समाप्त हो जाएगा तब यहाँ क्या आकर्षण होगा जिसके लिए सब आत्माएं यहाँ खींचकर चली आएंगी। आज बाबा ने कहा, आपके होते होते कई बार कह चुका है कि ये स्थान संसार का सर्वोत्तम तीर्थ स्थान है, जहाँ भगवान की नजर पड़ गई उससे बड़ा तीर्थ स्थान तो कोई हो ही नहीं सकता। जहाँ एक एक महापुरुष होकर गए, कदम रख दिया किसी धर्म पिता ने, वो भी तीर्थ बन गए हैं आज, कि हमारे फलाने गुरु इस स्थान पर आए थे, वो तीर्थ बन गए। और जहाँ भगवान आता हो वो इस संसार का सबसे बड़ा तीर्थ है। तो यहाँ भीड़ लगी रहेगी अंत तक, सभी आत्माएं मुक्ति और जीवन मुक्ति का वरदान लेने के लिए इस स्थान को टच करेंगे अवश्य। तो तब आकर्षण हो जाएगा, जैसे अब अव्यक्त बाप दादा है, तब आकर्षण का केंद्र होंगी महान आत्माएं और सतन बाप समान। जो बाप के द्वारा महसूसता है वही महसूसता उन रत्नों के द्वारा होने लगेगी, उनकी दृष्टि से, उनके बोल से, उनकी भावनाओं से। और ये वही आत्माएं हैं जिन्होंने अपने संकल्पों को बचा लिया है, उलझाया नहीं। तो हम सभी के लिए ये एक इम्पोर्टेंट लक्ष्य होना चाहिए कि हम संकल्प शक्ति को बचाएं, इसको बढ़ाएं। विदेही हमें बनना है। बहुत अच्छी स्थिति है ये कि हम इस संसार में रहें पर ये संसार हमें खींचे नहीं, हम कार्य करें पर कार्य हमें प्रभावित न करें, हम समस्याओं का समाधान करें पर समस्याएं हमें उलझाएं नहीं, घर गृहस्थ में रहें पर ऐसे ही रहें जैसे कि अकेले हैं। इन सब के लिए कुछ इम्पोर्टेंट धारणाएं। सबसे पहली, आपने बहुत बार ये सब बातें सुनी हैं, बाबा की मुरलियों में भी आ गई हैं, फिर हम सभी इस एक बात पर अटेंशन दें। बाबा ने अटेंशन के साथ तीन बार एक शब्द जोड़ दिया, कौन सा? अभी अभी बहुत 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 बोला ना, पहले दो बार बोला फिर तीन बार बोला बहुत 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 अटेंशन दो, क्योंकि ये विदेही स्थिति ही सेफ्टी है। आज भी बाबा ने कहा, देही अभिमानी स्थिति सेफ्टी है, सुरक्षा है, और देह अभिमान तुम्हें हरा देता है। तो हम सभी यहां बैठकर अपनी चेकिंग करेंगे अब, और वो चेकिंग है योग के मार्ग पर, संपूर्ण बनने के मार्ग पर, कर्मातीत होने में, सेवाओं के फील्ड में सबसे बड़ा विघ्न कौन सा है? और बोलो, और बोलो, देह अभिमान छोड़ के उत्तर देने हैं। देह अभिमान तो सभी चीजों में आ ही जाता है, बोल दिया है किसी ने, सुन गया है यहां तक, बोलेंगी बहने? मैंपन, मैं, मेरा सेकंड, लेकिन पहला मैं। कहां कहां मनुष्य के अंदर मैं आता है? हम सभी अब चेक करेंगे अपने को, और पूछने की तो बात नहीं कि कौन कौन मैं से मुक्त होना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा कोई नहीं होगा जो मुक्त होना न चाहता हो। या है कोई? ये पूछ लें, जो माताएं मैं से मुक्त होना नहीं चाहती वो हाथ उठाएंगे? जो मैं से मुक्त होना नहीं चाहती कोई नहीं है। मैं से सभी मुक्त होना चाहते हैं, क्योंकि इस मैं ने मार दिया है सबको, बहुत मारा है, मनुष्य पर मार पड़ी है अंदर ही अंदर, किसी और ने नहीं मारा, मनुष्य का मैंपन उसके लिए बहुत भयानक मार है, परेशानियों का कारण है, अनेक बीमारियां विकार इस मैंपन से पैदा होते हैं, बीज है ये। अब लिस्ट तो आप भी बना ले, मैं बनाकर तो नहीं लाया हूं, फिर भी एक मैं मनुष्य के अंदर आता है, मैं बड़ा हूं, इसलिए मेरी बात सभी को माननी चाहिए, बहुत ही नेचुरल सा संकल्प, बड़ा नेचुरल रूप से ये मैं काम करता है। अपने घर में जो भी बड़े हैं उन सबको ये संकल्प आता है या नहीं आता, भाई क्या कहेंगे, आता है। हमने देखा एक व्यक्ति 80 साल की उसकी आयु हो गई, उसका बड़ा लड़का 60 साल का, वो भी तो बड़ा हो गया, उसका भी बड़ा लड़का 35-36 साल का, वो भी बड़ा हो गया, इसके बाद भी जो सबसे बड़ा दादा था 80 साल का, वो इसलिए परेशान था घर में कि ये सभी मेरी बात नहीं सुनते, मेरे पास ही आया था वो, कि ये सब सारा परिवार ज्ञान में था, और वो इस बात से केवल परेशान और भारी था कि ये सब मेरी बात नहीं सुनते। मैंने तो हंसी कर दी उससे, मैंने कहा दादाजी अब तो ये भगवान की सुनते हैं, अब कब तक आपकी सुनेंगे, अभी ने कम से कम मौका तो दो ये भगवान की सुने, अपने अंदर की आवाज सुने, कुछ और अच्छी बातें सुने, अब ये कब तक आपकी सुनते रहेंगे, 60 साल तो हो गया इन्हें, 80 में से 60 तो हो गया होगा आपकी सुनते सुनते। तो जो भी बड़े हैं विशेष रूप से, बात तो छोटों में भी यही है, छोटे भी कहते हैं पप्पा हमारी बात ही नहीं सुनते, हमारे पास तो कितने यंग लोग आते हैं, उनकी अशांति का एक ही कारण कि हमारी सुनने वाला कोई नहीं, हम उन्हें यही कहते हैं कि आपके पापा भी हमें यही कह रहे थे कि हमारी सुनने वाला कोई नहीं इस दुनिया में, बच्चे भी हमारी नहीं सुनते, सबकी समस्या हो गई है, सबके मुख पे ये शब्द है कि हमारी सुनने वाला कोई नहीं, कहां से ये समस्या पैदा हुई है, मैंपन से, और ये परेशान कर रही है मनुष्य को। हम अपने से पूछें कि अगर हमारी लोग सुन भी लें तो क्या हम संतुष्ट हो जाएंगे, तो इस मैंपन से हमें मुक्त होना है। पहला मैं, नोट कर लें सभी, मैं बड़ा हूं, मेरी बात सुननी चाहिए, माननी चाहिए। दूसरा मैंपन, मैं बड़ा हूं तो मुझे सम्मान मिलना चाहिए, उचित सम्मान के हम अधिकारी हैं, क्योंकि बड़े हैं इसलिए हमें सम्मान मिले, ये सम्मान की मांग ये भी बहुत तंग करती है मनुष्य को। सम्मान मिलना चाहिए या नहीं बड़ों को, क्या कहेंगे आप, मिलना तो चाहिए। और दूसरा प्रश्न है कि बड़ों को सम्मान मांगना चाहिए नहीं मांगना चाहिए, मिलना चाहिए और मांगना नहीं चाहिए तो कहां से आएगा, मिलना भी चाहिए, वो तो नीति है, सभ्यता है, भारत की तो कम से कम सभ्यता है कि बड़ों को सम्मान मिलना चाहिए, परंतु मांगना नहीं चाहिए ये भगवान ने कह दिया हमें, क्योंकि मांगने से मिलता नहीं, मांग के देख लिया लोगों ने और नहीं मिला तो तंग हो गए कि कोई हमें पूछता ही नहीं, कोई सम्मान ही नहीं देता, तो सम्मान कहां से मिलेगा। ठीक है, देते जाओ सम्मान मिलेगा, दूसरों का सम्मान करेंगे मिलेगा, स्नेह देंगे तो भी मिलेगा, योग्य बनेंगे तो भी मिलेगा, पर हमारा रूहानी उत्तर है स्वमान में रहेंगे तो सम्मान मिलेगा। जिन्हें भगवान सम्मान देता हो उन्हें सारा संसार सम्मान देगा, बाबा ने ये कहा है स्वमान के बारे में। दूसरी बहुत अच्छी बात कि जो आत्माएं स्वमान में रहती हैं उन्हें तो स्वयं बाप भी सम्मान देते हैं, जो स्वमान में हैं उन्हें सम्मान देने के लिए अब जल्दी वो दिन आ रहा है कि उन्हें सम्मान देने के लिए ये संसार ऐसे ही उमड़ पड़ेगा जैसे देवियों के मंदिरों में देवियों के दर्शन करने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। क्योंकि वही तो सब हैं चेतन, जिनकी पूजा हो रही है वही तो चेतन में हम सब यहाँ बैठे हैं। तो हम सम्मान के भिखारी न बन जाएं, हम योग्यता से उसे प्राप्त करें, सम्मान देकर प्राप्त करें, स्वमान के द्वारा उसे प्राप्त करें। और बताएं मैं कहाँ आता है? बहुत आता है, कम से कम 25 लिस्ट बन सकती है, 25 जगह जहां मैं आता है मनुष्य के अंदर है। हाँ, ये काम मैं ही कर सकता हूं, मेरे बिना अगर मैं ना हूं तो सब भूखे मर जाएंगे। कई लोग कहते हैं घरों में अपने, मैं ना कमाऊं तो तुम सबको खाना भी ना मिले, और ये मैं उन्हें परेशान करता है। मैं ही करूं, दूसरा कोई ना करे, सेवाओं में कार्यों में केवल मैं ही करूं, ये चांस मुझे ही मिलना चाहिए, मुझे क्यों नहीं मिला, मैं योग्य हूं, ये मैंपन इस तरह मनुष्य के पास आता है। आप एक लिस्ट बना लें और चेक करें, रोज के जीवन में छोटे छोटे मैं को चेक करें, कहां प्रवेश कर रहा है ये सूक्ष्म शत्रु आत्मा का, और इसको हटाएं। इसमें कोई सुख नहीं है, ये अग्नि है जो आत्मा को तपा देती है, जलाती है ये अग्नि आत्मा को। वैसे तो ये कहते हैं कि आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, पर ये विकारों की अग्नि सचमुच आत्मा की शांति को खुशी को जला के नष्ट कर देती है, उसकी शक्तियों को जला देती है। इससे हमें बचना है। तो जिसको विदेही बनना है, जिसको अपने जीवन में दिव्यता भरनी है, वो इस मैं से मुक्त हो जाए, ये लक्ष्य है। देही अभिमानी बनने में हमें बहुत मदद मिलेगी, नहीं तो देही अभिमानी बनना कोई कठिन काम नहीं। हम सब आत्माएं हैं, हमें ज्ञान हो गया है इसका, हमें संपूर्ण ज्ञान हो गया है कि हमने इस तन में प्रवेश किया है, हमने अनेक शरीर लिए हैं, ये हमारे लिए कुछ भी नया नहीं है। परंतु कुछ बंधन हमें इस शरीर में जकड़े हुए हैं, आत्मा शरीर से डिटैच होना चाहती है, पर कुछ संकल्पों के बंधन उसे शरीर में रहने के लिए बांधे हुए हैं, विवश कर रहे हैं। हमें उन संकल्पों को पहचानना है। कई बार हम देहभांछ कह के बहुत सारे प्रश्नों को गहराई से नहीं सोचते, सोचते हम देह अभिमानी बनेंगे तो बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, पर देह अभिमान का असली स्वरूप है कि आत्मा को देह में जकड़ा हुआ है कुछ विशेष संकल्पों ने, बस कुछ संकल्प हैं जिसने आत्मा को अटैच कर दिया है, फंसा दिया है इस देह में। और अगर किसी को अभी शरीर छोड़ना पड़े तो भी वो शरीर छोड़ नहीं पाते, तो उन संकल्पों की हम अब पकड़ कर लें अपने जीवन में और उनसे मुक्त हों, ये देही अभिमानी स्थिति है, विदेही स्थिति है। दूसरी चीज, अब एक थोड़ी सी मोटी चीज पर हम चर्चा कर लें, इच्छाएं। और इच्छाओं में भी एक है इच्छाएं बहुत होना और दूसरा है इच्छाओं की गुलामी। बहुत सारे मनुष्य ऐसे हैं इस संसार में कि जब तक उनके मन में उठी इच्छा पूर्ण नहीं होती वो बहुत परेशान रहते हैं और दूसरों को भी करते हैं। बच्चों को आपने देखा होगा, सबने अपने अपने घरों में बच्चे ने बाजार में कोई चीज देख ली हो और जिद कर दी हो कि यही चाहिए, तो जब तक उसे न मिले खुद भी परेशान और दूसरों को भी परेशान रखता है। कई बड़े बच्चे भी ऐसे ही हैं, उनकी बड़ी इच्छाएं, ये जब तक पूर्ण न हो तब तक परेशानी रहती है। क्या करती हैं ये इच्छाएं? पहले से इन इच्छाओं पे भक्ति में, शास्त्रों में, आचार्यों ने बहुत कुछ बोला है। इच्छाएं दुखों का कारण है, इच्छाएं मनुष्य की बुद्धि को एकाग्र नहीं होने देती, इच्छाएं आत्मा की शक्तियों को नष्ट करती हैं, और इच्छाएं अतृप्त हैं, एंडलेस, कहीं अंत नहीं उनका, इच्छाएं कभी संतुष्ट नहीं होती। जो व्यक्ति इच्छाओं का गुलाम हो जाता है उसकी हजारों इच्छाएं उसे रात दिन नचाती रहती हैं। चेक कर लेंगे अपने को, हमें इस संसार में अब क्या चाहिए? आज भी आपने सुना, बाबा ने भी ये सबको अनुभव कराया साकार से, बहुत अच्छा पहनाया और खिलाया और फिर ड्रामा अनुसार सब खत्म। और ये परिस्थिति और स्थिति हरेक आत्मा के सामने आनी है। संन्यास में भी आपने सुना होगा, देखा होगा कि एक व्यक्ति को जब संन्यास दिलाया जाता था तो उसको तैयार किया जाता था, वो सब कुछ सहने के लिए तैयार रहे। पहले भिक्षा पात्र दे दिया जाता था, जाओ अपने ही घर से मांग कर लाओ भिक्षा, फटे कपड़े पहनो और जाओ जिस शहर में तुम बहुत नाम और मान शान की तरह रहे हो, वहीं जाकर भिक्षा मांग कर लाओ, अब तैयार हो जा आत्मा, कुछ भी उसमें सहने की शक्ति हो। मिलिट्री में भी देखा होगा, जो मिलिट्री के लोग हैं वो जानते हैं कि इतना तपाया जाता है मनुष्य के शरीर को ताकि वो भूखे प्यासे जंगल में, रेत में, गर्म रेत में या ठंडी रेत में, सब में पड़े रहें और सहन कर सकें। बाबा हम सभी की आंतरिक शक्तियों को बढ़ाने के लिए ये कहता नहीं है सब कुछ छोड़ दो, संन्यास करो, कष्ट दो इस शरीर को, ये नहीं कहता। लेकिन ये अवश्य सिखाता है कि तुम हर स्थिति और परिस्थिति में जो मिले या न मिले, अच्छा या कम, सब में किस तरह आनंदित रहो। ऐसे न हो आनंद चला जाए, ठीक मनपसंद भोजन न मिला तो आनंद ही न आए, और कोई सांसारिक इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो आनंद ही न आए, कपड़े अच्छे न हो तो योग ही न लगे। है ये स्थिति बहुतों की देखने में आती है कि सीधे साधे कपड़े पहन लिए आज तो मन खुश नहीं है, योग नहीं लग रहा है, आनंद नहीं आ रहा है, बहुत अच्छे कपड़े पहन लिए तो मन खुश हो गया, योग लगने लगा है, लेकिन वो योग कितनी देर चलेगा जब तक वो कपड़े पहने हैं, और वो उतरते ही योग कपड़ों के साथ था वो भी चला जाता है। इसलिए बाबा ने कहा चाहे 36 प्रकार के भोजन मिले या सूखी रोटी, दोनों में समान आनंद हो। साकार में बाबा कहते थे एक बैग भर के नोट लेकर जाएंगे बाजार में और एक गिलास पानी नहीं मिलेगा, कहेंगे कि लो एक बैग भरा है नोट, कई लाख हैं, भोजन खिला दो, है ही नहीं भोजन, क्योंकि प्रकृति भोजन देगी ही नहीं, अन्न उगेगा ही नहीं, प्रकृतिक प्रकोप सब कुछ नष्ट करने लगेंगे। इसलिए विनाश के बारे में जैसा हमने अनेक बार बाबा की मुरलियों को अच्छी तरह से समझ कर ये बात कही है कि विनाश कोई एक दिन में नहीं पूरा हो जाएगा। लोग विनाश की डेट देते हैं 7 जुलाई 1999, विनाश हो जाएगा, परलय हो जाएगी। हम सभी को मालूम होना चाहिए कि विनाश लंबा काल चलता है, कभी कहीं कभी कहीं, कभी ये शहर प्राकृतिक प्रकोप से नीचे चला गया, कभी यहाँ भूकंप आया सब नष्ट हो गए, कभी दूसरी जगह लड़ाई हुई, कभी तीसरी जगह ग्रह युद्ध हुआ, ये सब कुछ साल चलेगा। क्यों? क्योंकि ये विनाश काल ही धर्मराजपुरी भी होगी, जिसमें आत्माएं अपने पाप कर्मों की भिन्न भिन्न रूप से सजाएं पाएंगी। बाबा ने 84 में एक विनाश के लिए बहुत अच्छा रहस्य स्पष्ट किया था कि विनाश के काल में अनेक आत्माएं बार बार पुनर्जन्म ले लेंगी, एक एक साल, दो दो साल में, बस गर्भ में गई, बच्चा पैदा हुआ, दो चार मास के बाद मर गया, फिर आत्मा गर्भ में, फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ मर गया, फिर गर्भ में, 3-4-5 जन्म तुरंत हो जाएंगे विनाश काल में, 5-6 सालों में ही 5-6 जन्म। इससे आत्माओं के लंबे चौड़े पाप कर्म नष्ट होंगे, क्योंकि आत्मा को सबसे ज्यादा कष्ट जन्म और मृत्यु में ही होता है, सबसे ज्यादा कष्ट। हम एक दृश्य सुना रहे थे कल किसी को कि धर्मराज की सजाएं कैसी होती हैं, जरा आप कल्पना करो। आजकल बड़े बड़े शहरों में ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, बॉम्बे में तो हर साल एक गिर जाती है ऊंची बिल्डिंग, कलकत्ते में तो उसमें कई लोग दब जाते हैं, और एक तो 7 दिन के बाद निकला जिंदा। अब आप कल्पना करो 7 दिन में अंधेरे में अंदर दबा हुआ मनुष्य, जिसकी एक आंख फूट गई हो, उससे खून बह रहा हो, हाथ दबा हुआ हो, प्यास लगी हुई हो, पानी पूछने वाला देने वाला कोई नहीं हो, 7 दिन कैसी सजाओं में गुजरे होंगे, वो जिंदा हो, समझ सकते हैं ना क्या हुआ होगा, मनुष्य को 15 मिनट प्यासे को पानी न मिले तो तड़फन हो जाती है। 7 दिन ये सब सजाएं होंगी, 7 दिन तो उसके साथ युग जितने बीत गए होंगे, एक एक क्षण उसको मुश्किल पड़ रहा होगा, दिन है या रात ये भी नहीं पता होगा। ये कईयों के साथ होता रहा। अमेरिका में भूकंप हुआ, पुल गिरा, उसके नीचे कारें थी, लंबा पुल था, सब कारें दब गई। एक युगल 9 दिन के बाद जिंदा निकाला गया। 9 दिन के बाद उसकी मानसिक स्थिति संपूर्ण रूप से बिगड़ चुकी थी। अब वो न जिंदा न मरा, उसको संभालना सरकार के लिए और मुश्किल। ये सब विनाश काल में रोज होगा, इसलिए हमें अपनी इच्छाओं को समेट लेना चाहिए। अगर हमें विदेही बनना है तो हम अपने मन को समझा दें बहुत अच्छी तरह, ऐसी स्थिति बना लें कि हमें अब कुछ नहीं चाहिए, और हमें ये सिद्धांत भी पता हो कि जो योगयुक्त होंगे, जिनकी स्थिति अच्छी होगी, उन्हें सब कुछ प्राप्त होता ही रहेगा, उन्हें इच्छाओं की आवश्यकता नहीं। और ये भी बाबा ने बहुत बार स्पष्ट कर दिया, जिन्होंने लंबे काल इच्छाओं से मुक्त स्थिति बनाई है, वही संसार में अनेकों अनेक भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले बन जाएंगे। तो इसलिए दूसरी इंपॉर्टेंट धारणा, अपनी इच्छाओं पर ध्यान दें सभी। इच्छाओं के साथ एक शब्द जोड़ लें आप, जिससे आपको बहुत मदद मिलेगी स्वयं को चेंज करने में। हमारे पास सारा दिन, एक दिन को ही चेक करें, क्या क्या डिमांड है, डिमांड मांग, मन क्या क्या मांग रहा है सारा दिन। बड़ी सूक्ष्म चेकिंग है। जहां भी आप जाएंगे, सवेरे उठें, सेंटर में जाएं, लौकिक कार्यों में, घरों में, क्या डिमांड है आत्मा की। वो डिमांड अगर गलत है तो वो आत्मा की शक्तियों को नष्ट करती रहेगी। मांग, कुछ मांग है। एक व्यक्ति बीमार है, उसकी कुछ मांग रहती है दूसरों से, उस मांग को हम खत्म करें। इच्छाओं के साथ ही तीसरी धारणा जुड़ जाती है, कामनाएं। ये दो शब्द हैं, इच्छा और कामना। प्राय तो लोग इन्हें एक ही समझते हैं, इच्छा ही कामना है, कामना ही इच्छा है। पर कामना शब्द, इसका निर्माण आप जानते हैं, काम से हुआ है। काम प्लस ना। जब आत्मा काम से पूरी तरह मुक्त हो जाती है, काम विकार से, तब कामनाओं से मुक्त होती है। इंग्लिश में कामनाओं को कहते हैं एक्सपेक्टेशंस। जब काम से मुक्त है तब कामनाओं से मुक्त है। और काम, ये मनुष्य आत्मा के अंदर बहुत गहरी जड़ें जमा चुका है। जन्म जन्म 63 जन्म हम जिस जिन विकारों में रहे हैं, वो बहुत गहरे उतरे हुए हैं हमारे अंदर, छाप पड़ी हुई है ब्रेन में, मन में, बुद्धि में, संस्कारों में, कर्मों में। काम को भी हमें जीतना है और कामनाओं को भी जीतना है। काम जीत बनने के लिए मेरे पास सबसे अच्छा अनुभव, जो आत्मा को और इस शरीर को पावन बनाने में सबसे तेज गति से काम करता है, एक संकल्प स्वमान का, कि मैं इस देह में परम पवित्र आत्मा हूं। इस संकल्प पर आप कंसंट्रेट करके देखें। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे दूं, उदाहरण क्या, एक विधि बता दूं। आप थोड़ी देर के लिए एक स्थान पर बैठकर इस फीलिंग के साथ कि मैं इस देह में परम पवित्र आत्मा हूं, कुछ 2-3 मिनट व्यतीत करें, और फिर 15 मिनट के लिए एक अभ्यास करके देखें। बहुत धीमी गति से फीलिंग के साथ, अनुभव के साथ, नशे के साथ इस संकल्प को अपने अंदर दोहराएं कि इस देह में मैं परम पवित्र आत्मा हूं। फिर 10 सेकंड के बाद दोहराएं, मैं परम पवित्र आत्मा हूं। जब आप ये संकल्प करते हैं तो आप साथ में एक स्वरूप भी अपना देखें, कि मुझ आत्मा से पवित्र किरणें इस सारे शरीर में फैल रही हैं, 108 बार करें 15-20 मिनट का समय लेकर। आपको पता चल जाएगा कि एक एक संकल्प पर अगर हम एकाग्र कर दें स्वयं को, तो उसमें कितनी ज्यादा शक्ति है, उससे कितनी ज्यादा उसी तरह की एनर्जी आत्मा को मिलती है। ये पवित्रता का संकल्प है तो पवित्रता की शक्ति आत्मा को प्राप्त हो जाएगी। जो इस बात को समझ सकते हैं बहुत अच्छी तरह, वो समझ लें कि हमारा एक एक संकल्प उस तरह की एनर्जी हमें देता है, और एक एक श्रेष्ठ संकल्प पर अगर हम एकाग्र कर दें, उसके नशे में स्थित हो जाएं, तो वो अधिक से अधिक शक्ति हमें देने लगता है। संकल्प है मैं एक महान आत्मा हूं, आप इस नशे में आ गए, या आपने अनेक बार इसको फील कर लिया सारे दिन में, तो ये एक संकल्प आपको महान बनने की शक्ति दे देगा। एनर्जी आएगी आत्मा में, वाइब्रेशंस आएंगे उस तरह के। आपने संकल्प किया मैं विघन विनाशक आत्मा हूं, बार बार किया है संकल्प, एक संकल्प पर एकाग्र कर दिया आपने को, ये संकल्प आपको विघन विनाश करने की शक्ति दे देगा। मैं विजय रतन हूं, माया पर मेरी विजय निश्चित है, इस संकल्प पर आप एकाग्र करें, इसको बार बार लाएं अपने अंदर, ये संकल्प आपको रोज विजय का अनुभव कराने लगेगा। जहां हार होती है वो हार विजय में बदल जाएगी। तो सर्वश्रेष्ठ संकल्प मैं परम पवित्र आत्मा हूं, उस दिन भी हमने आपको कहा, लेकिन बहुत भाई बहने उस चीज का अभ्यास नहीं कर पाते, हम जानते हैं मैं इस तन में परम पवित्र फरिश्ता हूं, क्योंकि फरिश्तों की चर्चा भारत के ज्ञान में धर्मों में कम से कम आई है, इसलिए पहले से ही किसी की बैकग्राउंड उस तरह की नहीं होती है। विदेशियों को जब हम यही बात बताते हैं तो एक सेकंड में इसको ग्रहण करते हैं, मैं आत्मा हूं ये ग्रहण करने में उन्हें देर लगती है, मैं फरिश्ता हूं तुरंत ग्रहण करते हैं, क्योंकि क्रिश्चियन धर्म में फरिश्तों का ही सब कुछ वर्णन है। मैंने शायद यहां नहीं उस दिन छोटी क्लास में सुनाया था एक खुशी की बात कि विदेशों में इस समय एक विशेष तरह का अनुभव अनेकों का चल रहा है। ये बात हमारी कुछ टीचर बहनों ने जो विदेशों में रहती हैं बताई कि वहां क्रिश्चियन कंट्रीज में बहुत ज्यादा अनुभव हो रहा है लोगों को फरिश्तों का, कि फरिश्ते उनके पास आते हैं, उन्हें मदद करते हैं, कुछ संदेश देते हैं, कुछ कहते हैं, ये सब रोज अनुभव होने लगा है। किताबें लिखी जा रही हैं इसके अनुभवों की लोगों के, और बहुत ज्यादा प्रचार में आ गई है ये बात। तो ये सब हम सबके फरिश्ते स्वरूप का ही चमत्कार है। तो अगर आप इस अभ्यास को बढ़ाएं कि मैं आत्मा इस शरीर के अंदर लाइट के शरीर में हूं, बहुत सहज होता है ये अनुभव। और इसके बारे में हमें ये जानना चाहिए, उस दिन हमने थोड़े में बताई कि ये कल्पना नहीं है, ये सत्य है कि हम जो कुछ सोचते हैं हमारे संकल्प एनर्जी के रूप में लाइट के रूप में सबसे पहले इस शरीर में फैल जाते हैं। रोज सब देखते हैं हमारे मन में कमजोर संकल्प चल रहे हों, उदास करने वाले, तो चेहरे से पता लग जाता है, चाल भी धीमी पड़ जाती है, पैरों से पता चलता है, हाथ भी सुस्त हो जाते हैं, एक्टिव नहीं रहते। तो जो कमजोर संकल्प थे उनकी कमजोरी सारे शरीर में फैल गई, वो लाइट सारे शरीर में फैल गई। हम संकल्प कर लें मैं शिव शक्ति हूं, शक्तिशाली आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिवान। मास्टर सर्वशक्तिवान का अर्थ है, किसी ने पूछा था अभी मास्टर का क्या अर्थ है, मास्टर का अर्थ है यहाँ मालिक, अधिकारी। तो मैं सभी शक्तियों का मालिक हूँ, अधिकारी हूँ। ये संकल्प करें तो शरीर में उसी तरह की लाइट फैल जाती है, चेहरे पे उसी तरह का तेज, शक्ति, खुशी आ जाती है। तो हमारे मन से निकला हुआ प्रकाश इस शरीर के अंदर एक और शरीर का निर्माण करता है, उसके साथ ही आत्मा इस शरीर में रहती है। जब से आत्मा परम धाम से आई है आते ही, आई तो अकेली थी और आते ही उसका पहला साथ हुआ सूक्ष्म शरीर से, फिर स्थूल शरीर से। शरीर छोड़ती है आत्मा, सूक्ष्म शरीर के साथ छोड़ती है। इसलिए लोगों को अनुभव हुए प्राचीन काल में कि शरीर छोड़ते हुए आत्मा पैरों की तरफ से पहले निकल रही है, हाथों से सिमट रही है, यहाँ आ गई निकल गई। इसलिए लोगों ने सोच लिया इंडियन फिलोसॉफी में कि आत्मा इस शरीर में व्यापक है। ये गलती यहां से हुई थी। आत्मा शरीर में व्यापक नहीं, सूक्ष्म शरीर व्यापक है। और क्योंकि ये मन से निर्मित है इसलिए ये सूक्ष्म शरीर चेतन है पूर्ण रूप से। आत्मा और शरीर के बीच दोनों की कड़ी को जोड़ने वाला ये सूक्ष्म शरीर है। ये हमारे संकल्प से बड़ा और छोटा हो सकता है। बड़े व्यक्ति का शरीर छूटता है, गर्भ में छोटे बच्चे के तन में प्रवेश करती है आत्मा सूक्ष्म शरीर सहित। वहां जाते ही वो सूक्ष्म शरीर सिमट कर उस बच्चे के शरीर का आकार ग्रहण कर लेता है। तो ये संकल्प के द्वारा रचित शरीर है। आप लोगों ने सुना होगा और हम इसके थोड़े से विस्तार में चलें तो रसिया ने पिछले कई सालों से, 10-12 साल से, एक विशेष तरह का कैमरा बनाया गया जिसके द्वारा मनुष्य का जब फोटो लिया जाता है तो उसके चारों ओर जो प्रभा मंडल है, ओरा जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, उसका भी फोटो आ जाता है। आम कैमरे में तो उसका फोटो नहीं आएगा। तो इस कैमरे का उपयोग उन्होंने रोगों को ठीक करने में किया है। कैसे कि मान लो हमारे हाथ में यहां दर्द है तो यहां से जो प्रभा मंडल चल रहा है, किरणें फैल रही हैं, वो यहां कट जाएंगी तो चित्र जो बाहर का आएगा वो सीधा ना आके कटा हुआ आ जाएगा और उन्हें पता लगेगा कि यहां इस व्यक्ति को रोग है कोई। उसका वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, आगे जांच करेंगे, खोज करेंगे क्या है। इसका ही इलाज दूसरे ढंग से किया जाता है। विदेशों में भी प्रचलित है, भारत में भी थोड़ा थोड़ा, और हम सब भी कर सकते हैं कि आत्मा से जो एनर्जी निकल रही है उसको अगर हम यहाँ भेज दें तो वो यहाँ के रोग को ठीक करेगी। भेजेंगे कैसे? केवल हम संकल्प करेंगे कि आत्मा की ये सारी शक्ति यहाँ पहुंच रही है तो वहां पहुंचने लगेगी और उस तरह से हमारा रोग ठीक हो जाएगा। अभी आप लोगों ने सुना होगा हमारे यहाँ हॉस्पिटल में अब तक 90 हार्ट पेशेंट्स पर प्रयोग किए गए योग अभ्यास से। उनकी जो आर्टरी बंद हो जाती हैं, सहज भाषा में कि हमारे दिल को जो खून ले जाने वाली नलिकाएं हैं वो बीच में बंद हो जाती हैं, खून जम जाता है बीच बीच में, तो उसको ऑपरेशन के द्वारा काट के नया डाल दिया जाता है। उसको साफ करना तो कठिन है, उसको काट के नया जो पाइप जोड़ दिया जाता है, ऐसा समझो 5 पाइपलाइन हैं जो दिल को जा रही हैं, जिनसे खून आता जाता है, वो बीच बीच में बंद हो जाती हैं। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हमारे यहाँ आते रहे। ये कार्य अपने ग्लोबल हॉस्पिटल में हुआ, दिल्ली गवर्नमेंट की ओर से, भारत के डिफेंस मिनिस्ट्री के सहयोग से, डिफेंस मिनिस्ट्री का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसके सहयोग से। आपने सुना होगा अभी अभी डॉक्टर अब्दुल कलाम यहाँ पर आए थे वो सब देखने के लिए, क्योंकि वो उन सबके इंचार्ज हैं। वहां से कई डॉक्टर्स, साइकोलॉजिस्ट आते रहते हैं वहां। तो 90 पेशेंट्स पर ये प्रयोग किए गए कि उनकी जो आर्टरी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, वो रक्त वाहिनी नलियां बंद हो गई हैं, उनको खोला जाए। तो ये आश्चर्य की बात है कि 3 चीजें उन्हें कराई गई। एक हल्की हल्की एक्सरसाइज, घूमना फिरना, दूसरा भोजन, बिल्कुल कंट्रोल डाइट, कम से कम तेल में, हल्का नमक, मिर्च नहीं, डाइट उनकी कंट्रोल कर दी गई। भोजन खिलाया गया अच्छी तरह, लेकिन शाकाहारी तो होता ही है अपने यहाँ, नेचर क्योर का भोजन, प्राकृतिक चिकित्सा में जो भोजन दिया जाता है। और तीसरा उन सभी को योग अभ्यास कराया गया। योग अभ्यास कैसे? योग सिखाया उन सबको, क्योंकि वो ज्ञान वाले तो नहीं थे सब, कि शिव बाबा से लाइट आती है हमें,
पवित्रता की शक्तियों की किरणें आती हैं, आत्मा उन्हें ग्रहण करती है और आत्मा से जाती हैं वो दिल की ओर, और हम संकल्प करेंगे कि इन नलिकाओं को वो खोल रही हैं। बहुतों की खुल गई, अब जानते हैं लोग योगी तो नहीं थे उनमें से, पीछे अपने बी के भाई बहने भी कुछ कुछ आने लगे, उनको तभी योग सिखाया। नए व्यक्ति का कितना योग लगता है वो भी हम सब जानते हैं, थोड़ा थोड़ा उनका योग लगता था, उन्हें बार बार बैठाया जाता था, हल्के रूप से कराया जाता था। और केवल कहने की बात नहीं कि खुल गई, इसके तो सब रिकॉर्ड रखे गए, दिल्ली से हेल्थ मिनिस्ट्री से बड़े बड़े डॉक्टर्स और वैज्ञानिक यहाँ उपस्थित रहे, पहले चेकिंग की, बीच में की, परिवर्तन क्या आ रहा, अंत में की, वो सब रिकॉर्ड किए गए हैं, रिकॉर्ड रखे गए हैं, फाइल्स बनी है एक एक की। बहुत अच्छी सेवा हुई, और इस सबसे भी अच्छी सेवा ये हुई कि दिल्ली गवर्नमेंट की ओर से जो भी व्यक्ति आ गया देखने वो ब्रह्मा कुमार बन गया। चार वैज्ञानिक आए होंगे अब से चार पांच मास पहले, यंग वैज्ञानिक थे, चारों ही ज्ञान में चल गए, 7 दिन यहाँ रहे, बहुत अच्छा हुआ। कितने हार्ट स्पेशलिस्ट आए, अब्दुल कलाम तो इतना खुश हुआ, आप सबने सुना होगा, अब्दुल कलाम नाम से तो लगता है कि वो मुस्लिम है और शायद वो इन चीजों को न मानता हो, पर एक्चुअली वो इन सबसे परे है, मुस्लिम हिंदू ये सब। उसको इतना अच्छा लगा यहाँ आकर, और उसने दो बातें अपने छोटे से भाषण में कही, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है वो, उसके भाषण से पता चलता था कि कितना सार गर्भित वो बोलता है। तो पहली बात उसने कही कि मैं कुछ साल पहले अपने बहुत धनवान मित्रों के साथ दक्षिण के शंकराचार्य के घर गया मिलने, उसे मिले तो हमारे साथ जो सेठ था उसने पूछा कि महाराज मेरे 3 बच्चे हैं, 2 लड़के विदेशों में रहते हैं, एक लड़की डॉक्टर है बहुत बड़ी, पैसे की कोई कमी नहीं, जन्म जन्म से साहूकारी है, परंतु मेरे बच्चे मुझे प्यार नहीं करते, आजकल की समस्या है, तो मैं क्या करूं? तो कहने लगा हम शंकराचार्य को सब देखने लगे कि क्या उत्तर देता है। तो उसने 3 बार एक शब्द बोला, दो, तुम दो ने। तो उसने कहा कि मैं यहाँ आया हूँ, वो थोड़े ही समय के लिए आया था, शायद 1 दिन भी नहीं रहा, 1 दिन से भी कम, हाँ 1 दिन क्या, आधा दिन, रात को आया, सोया और दोपहर को चला गया, कि मैंने देखा यहाँ सब दे रहे हैं, कोई ले नहीं रहा। कितनी अच्छी ऑब्जर्वेशन थी उस व्यक्ति की, आधे दिन में उसने कितना कुछ देख लिया यहाँ, कि उसे लगा यहाँ सब दे रहे हैं। दूसरा प्रश्न उसने किया कि मैं अपना पूरा जीवन भर एक प्रश्न अनेक विद्वानों से और सन्यासियों से पूछता रहा, इतिहासकारों से पूछता रहा, कि द्वापरी अब से 2500 साल से भारत पर विदेशियों ने अनेक आक्रमण किए, जो इतिहास को जानते हैं वो जानते हैं, सिकंदर ने पहला आक्रमण किया भारत पर और उसके बाद होते ही रहे, मुसलमानों ने किया, हूणों ने किया, कुषाण आए, लास्ट में अंग्रेज आए, और कई क्रूर शासक आए, चंगेज खान, तैमूर लिंग, इन्होंने बड़ा भयंकर रूप, नादिर शाह कतलेआम का ऑर्डर देते हुए भारत पर अत्याचार किए, लूट के यहाँ से धनमाल ले गए, यहाँ के चरित्र का हनन किया, धर्म परिवर्तन कराया जबरदस्ती। तो कहा मैं सबसे पूछता था कि भारत इतना संपन्न और शक्तिशाली देश होते भी इसने किसी पर कभी क्यों आक्रमण नहीं किया? तो कहा उसका उत्तर मुझे यहाँ आते ही मिल गया। हम सब जानते हैं पहले तो भारतवर्ष संसार में सबसे अधिक साहूकार देश था, सोने की चिड़िया, द्वापर के इतिहास में वर्णन है, तो ये क्यों किसी की ओर देखेंगे? भूखा ही व्यक्ति दूसरों की ओर देखता है ना, जो भरपूर हो वो भला क्यों किसी की ओर देखेगा? तो भारत तो
बहुत पुरानी बात नहीं, अपनी जीवन कहानी में लिख दिया कि भारत में, काबुल में पत्र लिखा उसने जो छपा है कि भारत में सोने और चांदी हीरो के ढेर लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को उनकी वैल्यू का पता ही नहीं, इसलिए आ जाओ। अब यहाँ के लोगों को उसकी वैल्यू का क्या पता हो जब ढेर लगे हुए हैं? भाई यहाँ पत्थरों के ढेर पड़े हैं, हम उन्हें संभाल के तिजोरी में रखेंगे क्या? तो हीरा सोना ये तो सब पत्थर थे ना यहाँ। तो कहा कि मुझे पता लग गया कि भारत के पास स्पिरिचुअल हेरिटेज, रूहानियत, अध्यात्म शक्ति इतनी जबरदस्त है कि ये किसी का कुछ लेने का इरादा ही नहीं करता कभी। देखिए भारत की सभ्यता की कितनी महानता है, ये सुंदरता है कि यहाँ लोग दूसरे की ओर नहीं देखते, अपने में ही संतुष्ट रहे। ये तो अब मुश्किल से 50 साल में बहुत ज्यादा गिरावट हो गई, हार्डली 50 साल जो सभ्यता का पूरी तरह पतन हो गया, ये तो अब हम जानते हैं समाप्त होने जा रहा है। तो हम सभी अपनी स्पिरिचुअल पावर को, अपनी इस रूहानी शक्ति को बढ़ाएं। तो हम बात कर रहे थे, फिर वहीं आ जाएं कि योग की शक्ति को संकल्प से हम जिस तरफ भी भेजेंगे उस तरफ वो काम करेगी। मैंने स्वयं भी कईयों के कमर दर्द ठीक करने के लिए ये विधि बताई और ठीक हो गए, तीन तीन दिन में ठीक हो गए। कि फील करो आत्मा, बाबा से प्योर एनर्जी आत्मा को मिल रही है और यहाँ से पास होके सारे कमर में पहुंच रही है और उसको ठीक कर रही है, ठीक होने लगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी शक्ति है। तो मैं आत्मा इस शरीर में पहले लाइट के शरीर में विराजमान हूं। हम अपने स्वरूप को देखें बार बार, जैसे कि ये शरीर हमारा नष्ट हो जाए और मैं आत्मा केवल प्रकाश के शरीर में रह जाऊं। और अभ्यास के लिए आप बार बार अभ्यास करें, मैं आत्मा सूक्ष्म शरीर से इसको छोड़कर ऊपर जाती हूं और वापस प्रवेश करती हूं। थोड़े दिन के अभ्यास से आपको ये भिन्नता स्पष्ट होने लगेगी कि सूक्ष्म शरीर, आत्मा, देह ये किस तरह अलग हैं। और ये प्रवेश होती है आत्मा शरीर सहित इस शरीर में, ये फीलिंग्स बहुत सुख देगी। तो पवित्रता को बढ़ाने के लिए ये दोनों अभ्यास सबसे अच्छे रहेंगे। तीसरा एक संकल्प आप अपने साथ रख लें कि हमने भगवान से प्रतिज्ञा कर ली है संपूर्ण पवित्रता की, इस प्रतिज्ञा को हमें तोड़ना नहीं। जब भी कोई व्यर्थ फीलिंग आपके पास आए, अपनी प्रतिज्ञा को याद करो, भगवान से प्रतिज्ञा कर ली है, वचन दे दिया है। भारतवर्ष की सभ्यता की तो ये मानता थी कि जो कुछ वचन दूसरों को दे देते थे मरने तक भी उसका पालन करते थे। हमने भगवान को वचन दिया है, इसको रिवाइज करते रहें, अपने अंदर दोहराते रहें। और एक चीज और अभ्यास में ले आए, एक एक बार रोज आप इस चीज पे अटेंशन देंगे तो ये नेचुरल होगी कि जो भी व्यक्ति हमारे सामने आए हमें तो उसे पवित्र वाइब्रेशंस ही देने हैं। एक बहुत सुंदर सेवा का स्वरूप है ये, बहुत सुंदर सेवा। जो भी आए, आपकी दुकान है वहां लोग आते हैं, आप ऑफिस में काम करते हैं वहां आपसे लोग मिलते हैं, एक आदत डाल लें जो भी सामने आए हमसे पवित्र वाइब्रेशंस लेकर जाए। बाबा ने इस मुरली में एक कितनी अच्छी और गहरी बात कही है कि इतनी दुआएं इकट्ठी कर लो, याद है ना, जो भक्ति में तुम्हारे जड़ चित्रों से दूसरों को दुआएं मिलती रहें। एक दुआओं की बात की बाबा ने, पर सारी ही चीजें हम इतनी पवित्रता इकट्ठी कर लें कि हमारे जड़ चित्रों से पवित्र वाइब्रेशंस मिलते रहें। मिलते हैं ना, पापी व्यक्ति भी हमारे चित्रों के सामने जाए तो मन शुद्ध हो जाता है। वो यहाँ की यादगार है कि हमने अपने अंदर पवित्रता का बल इतना भर लिया कि जो भी हमारे सामने जाएगा जड़ चित्रों के सामने भी उसको पवित्रता की फीलिंग होने लगेगी। तो इस तरह काम को जीतेंगे हम, और इसी तरह कामनाओं को, कामनाएं अर्थात मनुष्यों से जो जो कुछ हम चाहते हैं व्यवहार, ये व्यक्ति हमें प्यार से बात करे, हमने इसे सहयोग दिया है ये हमारा रिटर्न करे, हमने इसकी इतनी इतनी पालना की है ये कम से कम हमारा एहसान तो माने। तो ये जो कामनाएं है मनुष्य के पास, मनुष्य सोचता है कि जो हम चाहें वही दूसरे लोग करें, इस पर भी सभी को विशेष ध्यान देना है कि जो हम चाहते हैं क्या दूसरे लोग वो कर सकते हैं। सभी पूछ लें अपने से, यहीं पर पूछेंगे सभी कि दूसरे मुझसे जो चाहते हैं क्या मैं पूरा कर सकता हूं? क्या इस संसार में कोई भी मनुष्य है जो दूसरों की सभी कामनाओं के अनुसार काम करे? होगा कोई? भगवान भी नहीं। यह कर सकता है भगवान? नहीं कर सकता। तो भला दूसरे हमारी कामनाओं के अनुसार काम कैसे कर सकते हैं? हंसी की बात एक सुना दूं, तो जब विदेशी लोग बाबा से मिलते थे ओम शांति भवन में कई साल पहले, तो बाबा लंबा लंबा समय उन्हें दिया करते थे और सवेरे के 6, 7, 8, 9, 10 बज जाते थे। शाम को 6 बजे से आके इतना समय 12 घंटे से ज्यादा, कभी 14, कभी 13, कभी 15, 16। तो किसी किसी को गुस्सा आता रहता था, देखा बाबा इनके साथ टाइम वेस्ट कर रहा है, समझ गए ना? तो भगवान को भी कह देते थे, देखा बाबा इनके साथ टाइम वेस्ट कर रहा है, एक एक के साथ, इससे तो अच्छा होता सबको एक साथ मुरली सुना के छुट्टी कर देता। भगवान को भी करेक्शन कर रहे हैं। तो कहीं मनुष्य की कामनाओं के अनुसार कोई भला कार्य कर सकता है सदा ही? तो हमें अपनी कामनाओं को जरा धीमा कर देना है, कम करें इनको, स्वतंत्र कर दें सबको, सिखाएं। आपके घर में बच्चे हैं, आप उन्हें अच्छी चीजें सिखाएं, लेकिन आप जानते हैं आजकल किसी को बांध के नहीं रखा जा सकता, या रख सकता है कोई? जितना आप उन्हें बांधेंगे उतना ही वो बिगड़ेंगे। हाँ, अगर आप उन्हें सुधारना चाहते हो तो आपके पास क्या चाहिए? शक्ति। पहली चाहिए शक्ति, स्नेह और शुभ भावनाएं। क्यों नहीं सुधरते बच्चे? अभी अभी बाबा ने उत्तर दिया, क्योंकि आपके बोल के साथ ये भावना भी काम करती है कि ये मेरे हैं। ये मेरेपन की हद की कामना आपके बोल को प्रभावहीन कर देती है, उसमें फोर्स नहीं रहता। हमने बहुतों से एक एक्सपेरिमेंट कराया, आप भी कर लें जो यहां बैठे हैं, कि जिसको आप कुछ कहते हैं अच्छी बात, और आप सोचते हैं ये व्यक्ति अगर ये अच्छी बात मान ले तो सब कुछ ठीक हो जाए, छोटे बच्चे हैं सुधर जाएंगे, ये बात मान लें, तो एक तो जब आप उन्हें अच्छी बात कहते हैं, इस स्वमान में स्थित होकर कहें कि मैं एक महान आत्मा हूं, या मैं पूर्वज हूं। दूसरा, जिसको आप कह रहे हैं उसके लिए आत्मिक भाव पैदा कर लें अपने अंदर, ये आत्मा है, मेरे बच्चे नहीं, भगवान के बच्चे हैं। स्वमान में स्थित होकर आत्मिक वृत्ति से जब हम दूसरों से बात करेंगे तो दूसरा व्यक्ति सहज हमारी श्रेष्ठ बात को ग्रहण कर लेंगे। ये एक प्रयोग है बहुत अच्छा, सबको इसकी जरूरत है, रोज घरों में कार्यों में आप इसका प्रयोग कर लें। परेशान ना हो कि मेरी बात मान नहीं रहे बच्चे, 15 मिनट अपने को दे के इसमें तैयार करें, फिर उनको कहें, तो आपकी भावनाएं निस्वार्थ स्नेह, विशुद्ध स्नेह आपके मन में पैदा हो जाएगा और स्वमान की शक्ति उनका कल्याण करेगी। तो अपनी कामनाओं पर जरा ध्यान देंगे सभी, इच्छाएं भी और कामनाएं भी। हर पेशेंट को भी हम सब ने ये सिखाया खूब खूब, और सबको सीखने की जरूरत है, क्योंकि दिल के रोगी बढ़ते जा रहे हैं संसार में, और उसके दो ही कारण दिखाई देते हैं। पता है कौन से दो कारण? एक, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? खून जम जाता है, नसों में खून जम जाता है, और उसका कारण है भारी भोजन। एक तो जो हमें भोजन मिल रहा है, आप सब जानते होंगे, उन पे आजकल दवाइयां बहुत छिड़की जाती हैं, सब्जियों पर कीटनाशक दवाइयां बहुत छिड़की जाती हैं, इसलिए उन्हें सभी अपने अपने घरों में नियम बना दें, गर्म पानी से धोकर ही काटेंगे, उसके बिना नहीं। बहुत अच्छी तरह माताओं के काम की बात है, गर्म पानी से धोए बिना कोई भी सब्जी आप यूज न करें। और भी अच्छा हो कि आप अपने घरों में गेहूं को भी एक बार धोकर सुखाकर फिर पिसाएं, क्योंकि बहुत सारे खाद और ये जीवाणुओं को नष्ट करने वाली जहरीली दवाएं उन पे डाली जाती हैं। अभी अभी यहाँ राजस्थान में एक केस हुआ, तो ऐसे ही कोई साधारण परिवार था, सब्जी खरीद के लाए, जल्दी जल्दी बनाई खिलाई, पांच लोग मर गए एक साथ। खोज हुई, आखिर पहुंची पुलिस के पास ये बात कि सब्जी रात लाए थे, किसान को बुलाया गया, किसान बेचारा भोला था, उसे बहुत कष्ट हुआ कि पांच लोग मर गए। उसने सहज रूप से स्वीकार किया कि कल ही तो हमने सब्जियों पर कीटनाशक दवाई छिड़की थी और जल्दी में शाम को वो तोड़ के बाजार में बेच दी, तो ये हमारी गलती है। उसने स्वीकार किया, जो भी सजा देना चाहें हमें दे सकते हैं, क्योंकि हमारी गलती से पांच व्यक्ति बच्चे ही थे वो मर गए हैं। इसका बहुत ध्यान रखना, पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, इसलिए अन्न की शुद्धि। और दूसरा टेंशन, आजकल तेल सभी को कम कर देना चाहिए भोजन में, क्योंकि तेलों में मिलावट हो ही रही है। ठीक है, एक पकड़े गए, दूसरे पकड़े नहीं गए हैं, पर हर तेल में मिलावट है। इसलिए हल्का भोजन करने की आदत डाल दें, डलवा दें सबको, आगे भी काम आएगी। विनाश काल में तेल की फैक्ट्रियां सारी बंद हो जाएंगी, तेल तो मिलेगा नहीं किसी को, इसलिए आदत भी डाल लेनी है। क्योंकि सतयुग में भोजन पकाया नहीं जाता, शुरू में तेल का यूज नहीं होता, प्रकृति से नेचुरल रूप से सब कुछ खाया जाता है, वो अचानक नहीं होगा, यहीं से ये विधि विधान बदलते बदलते सतयुग में चले जाएंगे। तो मनुष्य को मिलेगा ही नहीं, तो क्या करेगा, वो पत्ते ही खाएगा ना, फिर जो पत्ते खाए जा सकते हैं उनको वो खाएगा, जो सब्जियां कच्ची खाई जा सकती हैं, जो सहज मिलेगा उनको वो खाएगा, और ये सभ्यता सतयुग की ओर बढ़ जाएगी। इसलिए अभी से हल्का भोजन, टेंशन कम। वैसे तो अलग टॉपिक है, कहने से तो टेंशन कम नहीं हो जाएगा कि हम कह दें टेंशन कम करो और आप कम कर देंगे। टेंशन तो बहुत सूक्ष्म चीज है। क्यों टेंशन आती है, उसके कारण यही जिन पर हम चर्चा करते आ रहे हैं, पर एक और चीज का अब हमें अभ्यास करना है। अब हम आपका ध्यान दो विशेष धारणाओं की ओर ले चल रहे हैं। एक, हल्कापन बढ़ाना है जीवन में, बहुत हल्कापन, और दूसरा खुशी का खजाना बढ़ता चले। बहुत बड़ी चीज है हमारे पास खुशी, कहां संसार में किसी को खुशी मिल रही है, सब आप जानते हैं, अपने को भी और आस पड़ोस के लोगों को भी, कितने लोग खुश हैं संसार में, कितने परसेंट लोग खुश होंगे, अभी तो खुशी समाप्त होती जा रही है, टेंशन बढ़ता जा रहा है, लेकिन हम सभी खुश नसीब हैं। अपने जीवन का एक नियम बना लें, वर्तमान में संतुष्ट रहना, पास्ट को भी भूल जाएं, जो बीत गया उसको फेंक दें दूसरी तरफ, और जो होने जा रहा है वो हमारे हाथ में नहीं है, उसके लिए भी चिंतित न हो। वर्तमान, वर्तमान में हमारे सामने है स्वयं भगवान, वर्तमान हमारा बहुत सुखद है, हमसे चाहे सब कुछ छिन जाए लेकिन हमारे पास क्या है, भगवान का साथ, जिसे कोई छीन नहीं सकता। अन्न मिले या ना मिले, रहने को मकान हो या ना हो, प्रकृति कितना भी तूफान मचाए, लेकिन वर्तमान में हमने भगवान का सुख पा लिया, उसको देख लिया, अपने वर्तमान भाग्य के आनंद में आनंदित रहें। पूरे जीवन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मनुष्य संसार में वर्तमान का सुख नहीं ले रहा, या वो पास्ट में जी रहा है या फ्यूचर में, या वो बीती बातों के चिंतन से परेशान है या भविष्य में होने वाली उलझनों से तंग है। बहुत कम समझदार लोग वर्तमान का सुख ले रहे हैं। बहुत बड़े पैसे वाले हमने देखे, जिनके पास इतना पैसा कि उन्हें पता ही नहीं कितना, और बहुत तंग। कल एक फैक्ट्री खुल रही है, उसमें ये समस्याएं हैं, कैसे हल होंगी वो, परसों उसने धोखा दे दिया हमें, बहुत मुश्किलात है, सुख से खा भी नहीं रहे, परिवार से भी नहीं मिल रहे। मैं वो बात सुनाया करता हूँ सबकी, मुझे सुनाई थी एक सिकंदराबाद में जब गया था एक व्यक्ति ने, कि भाई हमारा तो ये हाल है कि लंदन जाते हैं, वहीं से फोन कर देते हैं, परिवार बॉम्बे में है कि भाई इधर सिंगापुर जा रहे हैं, एयरपोर्ट पे मिलने आ जाना, परिवार वाले सब एयरपोर्ट पे मिलने आ जाते हैं, सिंगापुर से, फिर फोन कर देते हैं कि अभी हमें हांगकांग जाना है, वाया दिल्ली जाएंगे, बहुत दिन हो गए मिले हुए, तो दिल्ली आ जाना परिवार से, मिल लेंगे आपसे। पैसा बहुत लेकिन सोने को भी समय नहीं, परिवार से मिलने को भी समय नहीं, तो वर्तमान का सुख नहीं, तो क्या करेंगे इस पैसे को? वर्तमान का सुख प्राप्त करना है। सभी सोच लें, वर्तमान में हर एक के पास बहुत कुछ है, सुख है, प्राप्तियां हैं, खाने पीने को बहुत है, तो न पास्ट की चिंताओं में बहुत अच्छा हो, समझदारी पूर्वक जो कुछ आज तक हो गया है, किसी लड़ाई हो गई, किसी ने धोखा दे दिया, कहीं मारा मारी, तेरा मेरा हो गया, उसको छोड़ दें सब, कि क्यों पास्ट से प्रभावित करके अपने वर्तमान को भी दुखद बनाए। पास्ट तो बीत गया, वो तो 5000 साल के बाद ही लौटेगा, हम क्यों अपने भविष्य को, इस वर्तमान को दुखी किए हुए हैं। तो खुशी के खजाने को बढ़ाना है, हल्के हो जाएं। कैसे होंगे हल्के? कुछ धारणाएं बना लें। एक इम्पोर्टेंट चीज है, बहुत गहरी, ज्यादा सोचने का संस्कार बढ़ता जाता है मनुष्य के पास आज, क्योंकि मन कमजोर हो चुका है, इसलिए बहुत सोचते हैं, बहुत सोचते हैं। छोटे बच्चे आप देखो अपने घरों में, बहुत सोचते हैं, बड़े कम सोचते होंगे, छोटे ज्यादा सोच रहे हैं, रूस गए हैं तो सोच ही रहे हैं। ज्यादा सोचने से आत्मिक शक्तियां नष्ट हो रही हैं, ज्यादा सोचने के संस्कार पर ध्यान देना है सभी को, हल्कापन आ जाएगा। दूसरा, बस 3 ही संकल्प आपको रखने हैं, भगवान हमारा साथी है, हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। तीसरा, सब कुछ कल्याणकारी होगा, चिंतित होने की जरूरत नहीं। इन 3 संकल्पों से अपने मन को हल्का करें, बहुत सारी चीजें भारी कर रही हैं मनुष्य के मन को, पहले ही पापों ने भारी किया हुआ है, पाप की अनेक गठरियां हर मनुष्य ने अपने सिर पर ली हुई हैं, अनेक बंधनों ने मनुष्य को भारी किया हुआ है, जिम्मेदारियों ने मनुष्य को भारी किया हुआ है, लेकिन अब जरा मन को हल्का रखने की आदत डालें। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे सवेरे उठने से ही, कि जो मन को भारी करने वाले संकल्प हैं, उनको हल्के संकल्पों में बदल दें। क्या होगा, ये काम ऐसे पड़ा है अभी, इसने साथ न दिया तो ये न हो जाए, कहीं ये काम न बिगड़ जाए। जैसे एक व्यक्ति की बात, फिर हंसी का एक संकल्प, अभी हमारे यहाँ इंजीनियरिंग कॉन्फ्रेंस थी, तो एक व्यक्ति, वो इंजीनियरिंग कॉन्फ्रेंस जरा बहुत बड़ी हो गई थी, उम्मीद थी कि 800 लोग आएंगे, आ गए थे 1600, और उसमें भी बहुत सारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से ऊपर के थे, अच्छे VIP, सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर, चीफ इंजीनियर बहुत थे, डायरेक्टर्स, प्रोफेसर, बहुत अच्छी जेंट्री आ गई। तो एक व्यक्ति बार बार, थोड़ा सा उसको ज्यादा सोचने की आदत है, एक शब्द मुख से बोलता था, कि अरे भाई कहीं कुछ हो ना जाए, एक भय का संकल्प उसके मन में, कहीं कुछ हो ना जाए। तो ये संकल्प कैसा है? लोग उससे पूछते थे क्या हो जाएगा, वो उत्तर उसके पास नहीं था, पर उसका एक संकल्प था कहीं कुछ हो ना जाए, तो कुछ भी नहीं हुआ। हमने देखा इंजीनियरिंग कॉन्फ्रेंस की एक बहुत बड़ी चीज हमने देखी, किचन में सभी लोग भोजन कर रहे थे, सभी लोग लाइन में खड़े होके लेते थे। हमारे यहाँ ऊपर मधुबन ज्ञान सरोवर में ऐसे लोग आते हैं तो उन्हें बाकायदे परोसने का प्रबंध किया जाता है, यहाँ सभी लाइन में खड़े थे, ले रहे थे। हमने एक अलग स्टॉल बना दिया और गाइड्स टीचर्स को कह दिया कि जो भी अपने VIPs को अलग खिलाना चाहे तो वहां बैठा है, वहां परोसा जाएगा भोजन। तो वो उन्हें कहते थे कि भाई साहब आपका प्रबंध उधर है, वो कहते नहीं हमें तो लाइन में ही मजा आता है। एक बहुत बड़ी चीज हमने इस बार देखी, और समझे सभी चीफ इंजीनियर और डायरेक्टर्स हमारे भी पहचान के थे कई, हमने उन्हें कहा कि आप क्यों खड़े हो, 5-7 मिनट खड़ा होना पड़ता है, अब वहां बैठो आपको, कि नहीं नहीं मजा आ रहा है सबके साथ। तो कहीं कुछ हो ना जाए, क्यों हो जाएगा भला? अगर किसी के पास ऐसे कमजोर संकल्प हो, उनको समाप्त कर दें। यात्रा पे भी जाते हैं ना, माताओं को डर रहता, हमारे बच्चे जा रहे हैं बाहर पिकनिक पर, स्कूल की बस जा रहे, कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं कुछ क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। हमें याद रखना चाहिए हमारे साथ तो भगवान है, जहाँ कुछ होने वाला भी होगा वो भी चेंज हो जाएगा। और जैसे कमजोर संकल्प हम करेंगे तो हमारे कमजोर संकल्प घटनाओं को क्रिएट करते हैं, घटनाओं की उत्पत्ति करते हैं हमारे कमजोर संकल्प। हम कमजोर संकल्प को बदल के शक्तिशाली संकल्प करेंगे, कुछ नहीं होगा। क्यों ना हम ये संकल्प कर लें कि जिधर को हम चलेंगे उधर रास्ता साफ हो जाएगा, अगर कोई विघ्न आने वाला भी होगा वो भी टल जाएगा, क्योंकि हम वहां से चल रहे हैं, हम इस देव देवियां हैं। ठीक है ना? कर सकते हैं? कर सकते हैं या नहीं? केवल तालियों से काम नहीं चलेगा। नशा है कि जहाँ इस देव और देवियां हों। जब लोग काम करने चलते हैं कोई कठिन, तो देवियों का दर्शन करके जाते हैं ना, अभी दर्शन कर जाओ मंदिर में, काम सफल हो जाएगा। और जहाँ देवियां खुद चल रही हों वहां क्या होगा? वहां विघ्न कहां से आए? लेकिन वो तब होगा जब देवी देवताओं को ये स्मृति हो कि हम इष्ट देव हैं, तो रास्ते के सारे ही विघ्न नष्ट हो जाएंगे। ये बहुत अच्छा अभ्यास है, विनाश काल में बहुत अच्छे अनुभव कराएगा। कहीं भी आपको ऐसे समय से, ऐसी परिस्थितियों से, ऐसे स्थान से, ऐसे लोगों के बीच से गुजरना पड़ जाए जहाँ भय हो कुछ होने का, वहां ये संकल्प कर लो आप, हम इस देव हैं, भगवान हमारे साथ है। जहाँ हम होंगे वहां सारी दुर्घटनाएं श्रेष्ठ घटनाओं में बदल जाएंगी, समय बदल जाएगा, ग्रह बदल जाएंगे, सब कुछ चेंज हो जाएगा। आपकी ये संकल्प ऐसा ही करेंगे और तब आत्मा हल्की रह पाएगी। हल्के हम तभी होते हैं जब हमें स्वयं में इस तरह का आत्मविश्वास रहता है। जब हम अपने में विश्वास रखते हैं कि हम शक्तिशाली हैं, हमारे होने से कुछ होने वाला नहीं है, ये जिम्मेदारी तो हमारे लिए खेल है। इस तरह अपने मन को हल्का करें। और अब एक अंतिम बात आप सभी के सामने, ये जीवन खेल है। हम सब तो ज्ञानी हैं, जानते हैं कि हम सब हैं इसमें एक्टर्स, ये विशाल ड्रामा है, हम इसमें एक्टर हैं। खेल है ये जीवन, इसको खेल बना दें, पहले मान लें कि ये खेल है। और खेल भी अंतिम खेल। अब खेल में जब दो टीम खेलती हैं, एक की हार एक की जीत, कभी समान हार जीत, दोनों ही टीम हार और जीत दोनों के लिए तैयार रहती है ना। दोनों ये तो नहीं सोचेंगे कि गोल्ड मेडल दोनों को ही मिल जाएगा, एक को मिलेगा, दूसरे पीछे रह जाएंगे, किसी का दूसरा नंबर, किसी का तीसरा। स्वीकार करके जाते हैं ना इस चीज को, जीवन एक खेल है, इसमें हार भी होगी और जीत भी, इसमें निंदा भी होगी और प्रशंसा भी, इसमें लाभ भी होगा और हानि भी, मान सम्मान भी मिल सकता है और अपमान भी, लोग सहयोग भी देंगे और विरोध भी होगा, सफलता भी मिलेगी और असफलता भी। इसको पहले ही स्वीकार कर लें, ये सब होगा। क्यों हो रहा है? हमने इतना अच्छा कार्य किया, लोग फिर भी निंदा कर रहे हैं, इतनी मेहनत की फिर भी फेल हो गए, यहाँ असफल हो गए। ये सब संकल्प जीवन में निराशा लाने वाले हैं। इन सब संकल्पों से स्वयं को निकाल दें। ये सब होगा, दोनों चीज होगी, क्योंकि जीवन एक खेल है। और अपने कर्मों को खेल की तरह करना सीखें। जब मनुष्य अपनी कामना के अधीन हो जाता है कि नहीं जीत हमारी ही होनी चाहिए और जीत नहीं होती, तब उसको बहुत निराशा होती है। एक स्टूडेंट को हमने देखा, उसके 12वीं क्लास में 90% मार्क्स आए, 90 बहुत हो गए ना, लेकिन दूसरे एक लड़के के 91 आ गए, और इस लड़के को जिसके 90 आए कोई खुशी नहीं, उदास। उसका बाप डॉक्टर था, होम्योपैथी, वो सब उसको समझा रहे कि भाई 90% उसने 91 ले लिए, ये तो भाग्य की बात होती है, इसमें कुछ कोई कम होशियार है कोई ज्यादा, ये नहीं, ये 1-2% का अंतर स्टूडेंट लाइफ में, तो भाग्य की बात है। एग्जामिनर किस मूड में था जब कॉपी चेक कर रहा था, पत्नी से लड़के आया होगा तो सबको कम नंबर दे देगा, और मन खुश होगा तो फटाफट ऐसे ही बिना पढ़े लिखे भी पढ़े ज्यादा दे देगा, ये तो आप सब जानते हैं ना। तो ये तो होती है भाग्य की बात। उसको बहुत समझाया लेकिन उस पर इतना मेंटल इफेक्ट हो गया, एक साल लगा उसको ठीक होने में, क्योंकि कामना बहुत ज्यादा थी और कामना की गुलामी हो गई कि मेरे से ज्यादा किसी के नहीं आए। हालांकि 90% तो बहुत ज्यादा मार्क्स हैं। तो इस तरह हम इस जीवन को एक खेल बनाएं, और इसमें एक ही शब्द आप याद रखेंगे इन सब बातों के साथ, कि जो कुछ भी जीवन में हो उसे स्वीकार कर लें। स्वीकार, एक्सेप्टेंस, स्वीकार कर लें, क्योंकि जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, जो कुछ हमारे साथ होगा, वो किस कारण? हमारे पूर्व जन्मों के पाप और पुण्यों के कारण हो रहा है, होगा। ठीक बात है ना? किसी के साथ कुछ भी बिना कारण नहीं हो रहा है। हम यहाँ से चलते हैं, पैर स्लिप हो जाता है, रोज होता रहता है किसी ना किसी का, बिना कारण कुछ नहीं हो रहा है यहाँ। तो जो कुछ हमारे साथ हो रहा है वो हमारे अपने ही कर्मों का परिणाम है, ये स्वीकार करते हुए, सहज उसको स्वीकार करके हल्के रहें। ये हल्के होने की विधि है। अब आप स्वयं इस पे विचार करें कि जीवन को हमें तो खेल बनाना है। आने वाले 5 वर्षों में जिन भयानक परिस्थितियों से संसार गुजरेगा, हम सब गुजरेंगे, उसे अगर हम खेल की तरह देखेंगे तो जीवन उससे भयभीत और दुखी नहीं होगा, खेल की तरह ही हम पार कर लेंगे। बल्कि अगर हम खेल के नशे में रहेंगे, स्मृति में रहेंगे, तो हमारी निरंतर विजय होगी। ओम शांति।